ओम शांति। रूस के एक लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने एक देवदूत के पतन की कहानी लिखी। एक बार एक देवदूत को धरती पर भेजा जाता है और उसका कार्य होता है, एक महिला है जिसकी आत्मा को वापस लाना है, उसकी मृत्यु हो गई है या हो रही है। तो वो देवदूत जाता है और देखता है कि वो महिला पड़ी हुई है और उसके एकदम अभी अभी जन्म लिए हुए 3 जुड़वा बच्चे, कोई रो रहा है, कोई बिलग रहा है, कोई चिल्ला रहा है, पुकार रहा है। अब इसका कार्य यह होता है कि उसकी आत्मा को ले जाना। तो वो जब ये दृश्य देखता है तो उसे बड़ी दया आ जाती है कि ये माँ मर गई तो इन बच्चों का क्या होगा, कौन इनकी देखभाल करेगा। तो वो सोचता है, नहीं नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा इनको, इसको तो जीना चाहिए। और पर उसको तो आदेश होता है कि तुम्हें लेके आनी। तो वो बिना उसकी आत्मा को लिए वापस पहुंचता है और जब ऊपर भगवान को ये पता चलता है तो उसको पूछा जाता है। पहले तो कुछ अधिकारी होते हैं, वो कहते, क्या तुम भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान हो कि किसको नहीं लाया जाए और किसको लाया जाए, अब तुम सोचोगे। तो वो कहता है, मैंने ये सब देखा इसलिए मैंने नहीं लाया। तो वो कहते, नहीं, तुम्हें दंड मिलेगा। वो कहता है, ठीक है, पर जो मैंने बात की वो तो सही है, दंड मैं भोगने को राजी हूं, परंतु जो कुछ मैंने किया वही सही है। कैसे किसी मां को इस तरह मारा जाए जबकि उसके 3 बच्चे, कौन देखेगा, कौन उनका देखभाल करेगा। तो उसको सजा दी जाती है कि तुम धरती पर जाओगे अब, और जब तक तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर नहीं हंसोगे तब तक ऊपर नहीं आ सकते, वापस अपने देव दूत पद को प्राप्त नहीं कर सकोगे। थ्राइस यू शुड लाफ ऑन यूर सेल्फ, 3 बार तुम्हें अपनी ही मूर्खता पर हंसना पड़ेगा। तो ये उसे शाप दिया जाता है और वो धरती पर आ जाता है। फिर अगला दृश्य जो दिखाया हुआ है वो एकदम ठंडी में, कहानी रूस की है, बहुत बर्फ, बहुत ठंड, और वो कुड़कुड़ाता हुआ एक कोने में बिना वस्त्रों के, एकदम दुबला पतला सा, पतला सा भूखा मनुष्य के रूप में। तो वहां से एक जूता बनाने वाला व्यक्ति जाते रहता है, वो देखता है और उसको दया आ जाती है इस भूतपूर्व देवदूत पर, और वो उसको देखता है और सोचता है कि बेचारा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, भूखा भी दिखता है, पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। सोचता है कि मेरी पत्नी ने तो मुझे भेजा था कुछ कपड़े खरीदने के लिए, क्यों ना मैं इसी के लिए खरीद लूं। और वो उसके लिए खरीदता है और उसको कुछ खाने के लिए भी देता है, और फिर सोचता है, अब ये जाएगा कहां, इसके पास तो घर भी नहीं है, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं। पर उसको वो कहता है, देखना, मेरी पत्नी जो है ना बहुत ही कर्कश स्वभाव है, बहुत ही तेज है, तो तुम जरा वो जो कुछ कहे तो सहन कर लेना, क्योंकि ऐसा ही कोई अनजाने अजनबी व्यक्ति को घर लेके आ गए और वो भी रहने के लिए, इतना जल्दी वो मानेगी नहीं। तो वो घर ले जाता है उस देवदूत को, और जैसे ही वो देवदूत घर आता है उसके पत्नी के 1000 प्रश्न पूछने चालू करती है वो, कहां से लाया, क्यों लाया, कितना दिन रहेगा। और वो इतना चिल्लाती है, उस देवदूत पर भी चिल्लाती है, तब वो जो देवदूत होता है उसको पहली हंसी आती है। वो मन ही मन सोचता है, मनुष्य देखो कितना मूर्ख है, इस स्त्री को पता ही नहीं उसके घर कौन आया है, यदि इसको पता चल जाए कि इसके घर एक एंजल आया है, एक देवदूत आया है स्वयं, जिसके आते ही खुशियां भर जाएगी, ऐसा एंजल आया है, इसको पता ही नहीं, इसकी अज्ञानता है, तो उसको पहली बार हंसी आती है। वो व्यक्ति पूछता है जूता बनाने वाला, तुम हंस क्यों रहे हो? वो कहता है, तीन बार हंस लूंगा फिर बताऊंगा क्यों हंस रहा हूं, उसके पहले नहीं बताऊंगा। और मनुष्य के घर कौन आ जाता है रोज और उसे पता ही नहीं चल जाता है, भगवान भी मिल जाता है तो भी शायद कभी कभी अनजान ही रह जाता है वह घड़ी, तकदीर जगने की, फिर भी अनजान ही रह जाता है। तो फिर वो देवदूत करे क्या? तो वो जूते बनाने वाला उसको भी अपना काम सिखाता है, मेरे साथ तू काम कर, और उसको जूते बनाने का काम सिखा देता है। पर वो तो इतना दक्ष हो जाता है, इतना एक्सपर्ट बन जाता है उसमें, कि उसके बनाए हुए जूते दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो जो देवदूत जो जूते बनाता है, क्योंकि आखिर में है तो देवदूत ही, कोई साधारण तो है नहीं वो, तो वो जो कुछ बनाता है ऐसे प्रसिद्ध हो जाता है, दूर दूर तक उसकी ख्याति हो जाती है। और एक महीने के अंदर वो जूते बनाने वाला बहुत अमीर बन जाता है, यहां तक कि राजा के कुछ सिपाही आ जाते हैं एक दिन कि हमारे राजा के लिए जूते बनाने हैं, तो वो तो मालिक बहुत खुश हो जाता है और वो अपने इस कामगार देवदूत से कहता है कि तुमको ना जूते बनाने, पर ध्यान रखना जूते ही बनाना, चप्पल मत बनाना, क्योंकि रूस में ऐसा रिवाज है कि चप्पल उसके लिए बनाए जाते हैं जिसकी मृत्यु हो गई है, इसके लिए जूते बनाने हैं। बहुत उसको समझाते हैं तो वो देवदूत काम पे लग जाता है और तीन चार दिनों में वो चप्पल ही बना देता है, पर बनाने थे जूते, इतना समझाने के बाद भी गलती करके चप्पल ही बना देता है। और जब वो मालिक देखता है कि आज तो देने के दिन है और तुमने ये क्या कर दिया, मेरी सारी पद प्रतिष्ठा मलिया मेट सब खत्म कर दोगे, तो उतने में राजा के सिपाही आ जाते हैं और कहते हैं कि रुको रुको, राजा की मृत्यु हो गई है, चप्पल बनानी है, स्लीपर बनानी है, जूते नहीं। और तब वो देवदूत दूसरी बार हंसता है और वो जो व्यक्ति है उसका मालिक उसको माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं था। व्यक्ति सोचता है मुझे जूते चाहिए, पर उसे इसका आभास नहीं आगामी मृत्यु का जो कि द्वार पर खड़ी है, और सारा जीवन ही जूते बनाने में लगता है। पर बनाने थे, बनानी थी चप्पल, तब वो दूसरी बार हंसता है। अब कुछ समय और बीतता है और एक दिन एक बहुत रईस महिला उस दुकान में आती है जूतों के, उसके साथ उसकी तीन बेटियां होती है एक समान दिखने वाली। और जैसे ही वो देवदूत देखता है ये कौन महिला है, वो महिला तो उसकी पहचान की नहीं होती है, पर वो जो तीन बेटियां है उसकी जवान, वो देखता है ये तो वही है, तीन बच्चियां जो पहले थी, जिसको जिनके वजह से मैं शापित हुआ ये तो वही है। और वो पूछता है उस महिला से, ये क्या आपकी लड़कियां है? वो कहता है मेरी नहीं, ये तो एक महिला थी बहुत ही गरीब निर्धन, उसकी बच्ची है, उसके पास तो इसके लिए कुछ भी नहीं था, आज वो जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां एकदम निर्धन होती, अच्छा हो गई वो चली गई और मेरे कोई संतान नहीं थी इसलिए मैंने इनको एडॉप्ट कर लिया, और आज देखो ये कितने थाट बाट से रहती है और अभी इनकी तो राजमहल में सम्राट के साथ शादी भी होने वाली है। तब वो देवदूत तीसरी बार अपने पर हंसता है, सोचता है मैं भी देखो चतुर सुजान बन रहा था, होशियार बन रहा था, सोच रहा था कि उसकी मां को बचा लूं। वो महिला कहती है अच्छा ही हुआ उसकी मां गई, नहीं तो आज तो ये कैसी निर्धन अवस्था में होती तीनों ही। तो वो तीसरी बार स्वयं पर हंसता है कि मनुष्य कितना अल्पबुद्धि है, कितना कम सोचता है, जो होने वाला है उसका उसे कोई आभास नहीं, उसे कुछ पता नहीं। तो तीन बार वो अपने आप पर हंसता है, और अपने आप पर हंसना एक बहुत अच्छी बात है, अपनी ही मूर्खता पर हंसना, उससे अधिक बुद्धिमान कौन, दूसरों की मूर्खता पर सभी हंसते हैं, पर अपनी ही मूर्खता पर हंसना, अपने ही किए हुई गलतियों पर हंसना, पाप पर हंसना, विकर्मों पर हंसना, ये बहुत बड़ी बात है, ये सबसे ज्यादा बुद्धिमानी की बात है वास्तव में। तो जो गलतियां हो गई, अब क्या करना है, जागृति लाओ। बाप भी तुम्हें 3 बार माफ करते हैं, कल की अव्यक्त वाणी उसमें 10 पॉइंट्स है, 5 बातों की चर्चा भी हम करेंगे, 5 बातें यदि हो सके तो शाम को, जो मुख्य मुरली है। तो 10 बातें, उन 10 बातों में से अंतिम 5 जो बातें अर्थात 6, 7, 8, 9, 10 उसकी चर्चा अभी करेंगे, और शाम को रात्रि को पहली 5 बातों की चर्चा। तो 6वीं बात है, बाप बाने हम बच्चों को 3 प्रकार की सेवा करने को कहा है। कौन से 3 प्रकार? सबसे पहला तो सच्ची शांति और सच्ची खुशी आत्माओं को देनी है। अकाल पड़ा है संसार में सच्ची खुशी का और सच्ची शांति का। किसी के पास भी खुशी नहीं है, शांति नहीं है, और हमारे पास भंडार है, कारून का खजाना हमारे पास है, धन कुबेर हम है। सच्ची खुशी और सच्ची शांति आत्माओं को देना है। कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर मिल नहीं रही है, क्योंकि पता ही नहीं, गले का हार है, गले में है हार और बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये सबसे पहला काम है हमारा, आत्माओं को ज्ञान कम अनुभव ज्यादा कराना है, क्योंकि ज्ञान सुनाने वाले संसार में बहुत है, यहां पर भी बहुत है, अनुभव कराने वाले कम है। तो आत्माओं को शांति का अनुभव और खुशी का अनुभव, एक पल की भी खुशी मिल जाए तो झूम उठे आत्मा। दूसरा, जो हिप्पी है उनको क्या करना है, हैप्पी करना है। हिप्पी अर्थात जो दिन रात कोशिश करते रहते हैं, तन मन धन मेहनत करते रहते, प्रयत्न करते रहते, ऐसे जो क्या बन गए, हिप्पी। ये मुरली 84 की है, उसके कुछ दशक पहले हिप्पी कल्चर बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जिसकी किसी एक अव्यक्त मुरली की क्लास में विस्तार से चर्चा की थी। हिप्पी कल्चर क्या है, कैसे वो हिप्पी निकले, वो किसी सिद्धांत को मानने वाले नहीं है, विद्रोह था वो, एक कोई धर्म नहीं था, विद्रोह, सारी मान्यताओं को ठुकरा दिया उन्होंने, हम जो मर्जी चाहे वो करेंगे, ये कुछ हमको नहीं चाहिए, ना ये चर्च, ना ये धर्म, ना ये किताबें, ना ये शास्त्र, ना ये संस्कृति, कुछ नहीं चाहिए, विद्रोह था वो, एक रिवॉल्ट। पर वो खो गया, क्योंकि उसका कोई लीडर नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, घूमना फिरना, झूमना गाना, बस ड्रग्स, अतिंद्रिय सुख के लिए, और उसमें अनुभव करना वो सारे ड्रग्स लेकर, तो समाप्त हो गया वो कल्चर। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो हिप्पी बन गए उनको क्या करना है, हैप्पी। हिप्पी अर्थात केवल वो नहीं जो थे उस दशक में, 60-70 के दशक में, अभी भी बहुत है हिप्पी। हिप्पी अर्थात जो निरंकुश जीवन जी रहे, हिप्पी अर्थात जो भटक रहे, ढूंढ रहे, खोज रहे, कोई दिशा नहीं है जीवन में, दिशाहीन जीवन है, ऐसे लोग जो है उनको क्या करना है, तुमको हैप्पी। और तीसरा, भक्ति मार्ग में कौन सी माता का गायन है, अन्नपूर्णा के भंडार, जिसकी जो आवश्यकता है उसको क्या करो, अन्नपूर्णा मां। अन्नपूर्णा अर्थात जो दूसरों को भरपेट भोजन खिलाए, तृप्त करे, पार्वती का, उमा का, देवी का, काली का, दुर्गा का एक नाम है अन्नपूर्णा, मां का, जो कि भोजन की अधिष्ठात्री, जो कि सबके उदर का वहन करने वाली है, ऐसे हम सब कौन है, मां अन्नपूर्णा। तो हिप्पी को हैप्पी बनाओ, अन्नपूर्णा माँ बनकर सबकी आवश्यकताएं पूर्ण करो और संसार की आत्माओं को सच्ची खुशी और सच्ची शांति देनी है। कैसे देंगे? ये तीनों ही काम। हजारों आत्माएं हमारे संपर्क में आती है, हर दिन कितने लोग आते हैं, कुछ हमसे बात करते, कुछ हमारे समीप पहुंचते, कुछ हमसे बात नहीं करते, दूर से चले जाते, पर जो जो हमको दृष्टिगोचर हो, दिखे, उनके प्रति जैसे ही कोई दिखे, जैसे ओम शांति भवन में कोई घूमने आया या सेवा केंद्र पर या रिट्रीट सेंटर देखने कोई आए, तो संकल्प करना है कि इसे भी भगवान का परिचय मिल जाए। ये भी भगवान की संतान है, ये भी देवकुल की महान आत्मा है। उस आत्मा के प्रति, उस अज्ञात अननोन सोल के प्रति श्रेष्ठ संकल्प कर देना, क्योंकि उसके लिए ऐसा संकल्प शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। किसी एक मुरली में बाबा ने कहा है, जब भी कहीं पर सेवा करने जाओ तो लक्ष्य ये नहीं रखो कि भाषण करना है, लक्ष्य रखो एक उनके अंदर प्यूरिटी जाग जाए, दूसरा उनके अंदर परमात्मा प्रेम भर जाए, तीसरा वो अशरीरी स्थिति का अनुभव करे। ये लक्ष्य रखो। बोलना लक्ष्य नहीं है, पॉइंट सुनाना लक्ष्य नहीं है, पॉइंट्स रिवाइज करना और इतनी बता दू, ये लक्ष्य नहीं है। 10 थी, एक मिस हो गई और उसी के लिए दुखी है, कौन सी थी याद नहीं आ रहा है, और अनुभव उसके पीछे, उस एक पॉइंट के पीछे भूल गया, बाकी जो सुनने वाले उनको तुम्हारे पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो तुम्हारी अपनी है, वो तो कुछ लेना चाहते हैं, वो तो खाली है। तो पॉइंट्स के पीछे सकाश को न गवा दो, तो आत्माओं को अनुभव कराना, ये सबसे पहली बात इस मुरली में जो पापा ने कही है। दूसरा, दो प्रकार के बच्चे हैं, भटकने वाले, गलती करने वाले, गिरने वाले। कौन कौन से? सबसे पहले तो अलवेलेपन के कारण जो तीव्र पुरुषार्थी से ठंडे पुरुषार्थी बन जाते, टीपी से टीपी बन जाते हैं। टीपी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी और टीपी अर्थात ठंडे पुरुषार्थी। अलबेलेपन के कारण तीव्र थे पुरुषार्थी, परंतु अब ठंडे ठाकुर, सुस्त महादेव, मिट्टी के महादेव, मिट्टी के माधव बन जाते हैं। तो ऐसे जो एक प्रकार के ये बच्चे, इनको भी याद प्यार दिया बाबा ने, इनके भी पत्र आए बाबा को, कितने सारे लोगों को याद किया है मुरली में, भारत वाले, विदेश वाले, जो बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं, जो तड़प रहे हैं, जो आए हैं, जो नहीं आए हैं। और ये एक ग्रुप है जिसको बाबा ने याद किया, जो पहले तो बहुत तीव्र पुरुषार्थी थे, परंतु अब पुरुषार्थ अब उनकी किताब से बाहर हो गया है। वो कहता है अब ये दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी, अब ये पुरुषार्थ हमारे बस काम की चीज नहीं, हमारे बस की बात नहीं, जिसको करना है करे, हमने बहुत कर लिया पुरुषार्थ, हमारा जमा भी हो गया है शायद बहुत। तो ये एक ग्रुप है, पर इससे भी खतरनाक अभी एक दूसरा ग्रुप है यहां पर, जिससे हमने क्लास की शुरुआत की थी। ये वो ग्रुप है जिन्होंने माया के चक्र में आ गए, फिर चक्र में आते आते ये नहीं समझा हम माया के चक्र में, तब तो आराम की अनुभूति हुई, ऐसा नहीं समझा अपने आप को कि हम माया के चक्र में, परंतु चक्र में आ गए अर्थात कोई बड़ा पाप, कोई विकर्म, कोई श्रीमत का उल्लंघन यहां किया, पाप किया, विकर्म किया, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, सारी मर्यादाएं पता है, सारे नियम पता है, फिर भी जानबूझकर नियम और मर्यादाओं को तोड़ा, ऐसे चक्र में आए। पहले पहले तो आराम लगा क्योंकि थोड़ा सा सुख हुआ, सुख मिला, क्योंकि विकारों में इंद्रिय सुख तो है, और फिर अभी पश्चाताप में आ गए और अभी बाप के सामने, और अभी कहते हैं बाबा ऐसा हो गया क्या करे, अभी चिल्ला रहे, अभी रो रहे, पाप करने के बाद, विकर्म करने के बाद पश्चाताप अब कर रहे, माया के चक्र में आने के बाद। ये वो कैटेगरी है तो बाबा ने कहा बाप को इनके भी पत्र मिले, बाप इनको भी याद प्यार देते हैं और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, बीती सो बीती। क्या कहते हैं, जो हो गया सो हो गया, अब फुल स्टॉप। फुल स्टॉप अर्थात फुल स्टॉप के बाद में नया स्टेटमेंट चालू होता है, नई लाइन, पूर्ण विराम, अब नया वाक्य चालू होगा, नया उमंग, नया उत्साह, नए जीवन का अनुभव करो। नया उमंग, नया उत्साह, अब नए जीवन का अनुभव करो। अभी तो स्मृति आ गई ना, अभी जागृति आ गई, परंतु यह जागृति आनी चाहिए। उसके लिए तीन बार अपने आप पर हंसो, स्वयं पर ही हंसना, अरे मूर्ख क्या पाया इंद्रिय सुख से, इतने छोटे से सुख के लिए इतना बड़ा अतीन्द्रिय सुख खो दिया, गवा दिया, मेरे जैसा मूर्ख संसार में कोई नहीं, मूर्खों की श्रेणी में महामूर्ख, महामूर्खों में महामंडलेश्वर मैं ही हूंगा। अगर कहीं प्रतियोगिता हो तो हम ही ये पुरस्कार जीत कर ले जाएंगे। अरे मूर्ख मन अब तो सीख, अब तो समझ, कहां भाग रहा है, काम चाहिए या राम चाहिए, कौन चाहिए, किसके पीछे ऐसा पागल, क्यों ये आतुर था, प्राण आतुर हो जाते हैं पाप करने के लिए, विकार के लिए, इंद्रिय सुखों के लिए, डूबने के लिए, वो क्षणिक सुख पाने के लिए, वो गलतियां करने के लिए, क्यों। अपने आप से बातें करनी, अपने आप पर हंसना, अपनी मूर्खता पर हंसना, अपनी मूढ़ता पर हंसना। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, अरे मूर्ख मन क्या कर रहा है तू। शंकराचार्य जा रहे होते हैं, देखते हैं एक 90 साल से भी ज्यादा बड़ा व्यक्ति संस्कृत स्टडी कर रहा है, ग्रामर, व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण। उसको दया आती, अरे रे ये क्या कर रहा है, ये भज गोविंदम का समय है और ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया और व्याकरण के नियम खोज रहा है। तब वो इतना बड़ा वो कविता लिखता है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, अरे मूर्ख मन अस्य ब्रह्माणी रमते चित्तम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, नंदती नंदती नंदत्तेव। तो पूरा वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है भज गोविंदम का। तो अरे मूर्ख मन, ओ फुलिश माइंड, क्या कर रहा है, क्या चाहिए तुझे, चाहिए क्या बता, तू दे दूंगा। सबसे पहले पर्पस बता, अपने मन का पर्पस, क्या चाहिए, क्यों जा रहा है इधर उधर। विदाउट पर्पस डू नॉट गो टू YouTube। जब तक पर्पस क्लियर नहीं है कि मुझे ये ढूंढना है या ये देखना है, उसको हाथ ही नहीं लगाना, नहीं तो वो ब्लैक होल है, सक कर लेगा। पर्पस, YouTube एडिक्शन क्यों हो रहा है संसार में, हर जगह YouTube एडिक्शन है, हर व्यक्ति एडिक्ट है किसी ना किसी रूप से, क्यों, क्योंकि देखता है उसका पर्पस कुछ नहीं है, लक्ष्य कुछ नहीं है, निर्लक्ष्य है, जो दिखता है उसमें चला जाता है। सबसे पहला नियम वर्तमान समय इसको बनाना है, बिना लक्ष्य के इस अभयारण्य में प्रवेश न किया जाए। Trespassers are prohibited, इसमें एंट्री नहीं करना, नहीं तो खींच लेगा, दबोच लेगा और ब्राह्मण जीवन संकट में आ जाएगा, फिर दुविधा आ जाएगी, फिर पाप, फिर विकर्म, फिर पश्चाताप, बाबा मैं क्या करूं। बाप तीन बार माफ करते, बाबा तीन चांस देते हैं। अभी तो स्मृति आई, अभी तो जागृति आई, अब नया जीवन, नया उत्साह और नए जीवन का अनुभव करो। तो ये तीन बातें, पॉइंट नंबर 7। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें फिर आएंगे। यहां पे और तीन चीजें हैं, बाबा ने तीन चीजें दी, एक तो बैच दिया सफलता का, एक तिलक दिया विजय का, और स्नेह के पुष्पों का गुलदस्ता। ये योग का प्रयोग है, सूक्ष्म वतन में जाना और बाबा क्या दे रहे, स्नेह के पुष्पों का गुलदस्ता, स्नेह दे रहे, प्रेम दे रहे, परमात्मा प्रेम दे रहे। अब ये परमात्मा प्रेम तुम्हें सबको देना है, इसी को बांटना है, अपने पास रख नहीं लेना है, बांटना है। और जब तक ये नहीं बांटेंगे, हमारे अंदर का वैसा ही कम होते जाएगा, बांटने से बढ़ेगा। तो क्या देखना है सूक्ष्म वतन में निखिलेश भाई, बाबा क्या दे रहे हैं? पहले तो स्नेह के पुष्प का गुलदस्ता दिया, उसके बाद में विजय का तिलक, भगवान ही विजय का तिलक लगा दिया है। तो हार हो सकती है क्या? हार तो तब होती है जब निश्चय नहीं हो, जब संशय हो, जब पहले ही पता है हमारी जीत होगी, उसकी हार होना बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो सकती हार। और भगवान ने क्या दे दिया? बैच लगा दिया। एक लोग अपना अपना फोटो रखते हैं ना, बैच वाला लगा रहे, दादी या जो भी लगा रहे, वैसे ये फोटो रखना कि भगवान ही बैच लगा रहा है। कौन सा? सफलता का बैच। सफलता किसमें? सेवा में। विजय किसमें? विकारों को जीतने में। ये दो शब्द है, विजय और सफलता। सफलता जो भी सेवाएं करेंगे, जहां पर भी जाएंगे, जो भी सेवाएं करेंगे, जो जो हमारे दृष्टि को लेगा या वाणी को सुनेगा या हमारे संपर्क में आएगा, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि, संबंध संपर्क और समय, बुद्धि से समय का दान, तो उसको अनुभव होगा। तो ये तीन चीजें। उसके बाद नौवा, चेयर, चेयरमैन। चेयर अर्थात अपनी सीट की पर सेट हो जाना, स्थित हो जाना, अर्थात स्वमान की सीट पर रहना। जो स्वमान में, उसका कोई अपमान नहीं कर सकता है। लोगों को इस बात का बहुत फील होता है कि हमारा सम्मान नहीं किया गया, यथोचित सम्मान नहीं किया गया, हमको देखा नहीं गया, हम गए तो कोई था ही नहीं वहां पर हमारा वेलकम करने। और जब ये लोग आए थे तो हमने कितना वेलकम किया था, हम गए और कोई है ही नहीं, ठक ठक कर रहे और कहते कौन है। हम गए किसी कई जगह पर भाषण देने और वहां गया तो ऑडियंस ही नहीं है, माइक ही नहीं है, और फिर वो एंकर पूछता है आप कौन हो। टाइम पर पूछे वहां पर आप कौन हो। तो चेयर अर्थात जो चेयर पर है वो, जो चेयर पर है वो कौन सा यमक प्रयोग किया बाबा ने, वो नियर है। चेयर पर जो है वो नियर है, बाप के नियर। तो चेयर और नियर, तो चेयर पर स्थित होना अर्थात अपने स्वमान के सीट पर सेट हो जाना और सीट पर सेट रहना, सदा सदा चेयर पर रहना। यहां पर तो चेयरमैन दादियों से मिला कर, दो जोन की दादियां थी उनसे बाबा बात कर रहे। चेयरमैन है जो, अर्थात सीट पर सेट है। तो निरंतर इसका सबसे ज्यादा अभ्यास करना है, सारी मूल्यों से रोज समान निकालने हैं, और उनको केवल रटना नहीं है, उनको अंदर समा लेना है, धीरे धीरे उसको जाने देना। एक ही समान एक घंटा तक चिंतन हो, धीरे 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 उसको समझना है, अपने मन को समझाना कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वो नहीं हो, तुम ये हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे हो। कौन समझाएगा? दूसरा तो नहीं समझा सकता, दूसरा समझाए भी तो हम मानने वाले थोड़ी ना है। हमारा अहंकार अनुमति नहीं देता है कि हम दूसरों की बातों को हम क्यों सुने, क्या हमारी क्या कम बुद्धि है क्या, हम इसका ज्ञान सुने, ये आए बड़े आखाड़े के दादा हम हैं। तो चेयर। और लास्ट पॉइंट, ट्रिनिडैड से मुलाकात, निर्बंधन। लास्ट पॉइंट है निर्बंधन। क्या मैंने अपने आप को निर्बंधन किया है? कितना बड़ा प्रश्न है। निर्बंधन, फ्री, कोई बंधन नहीं। दो बंधनों की चर्चा की है, संबंध और संस्कार, स्वभाव संस्कार और संबंध। कोई भी संबंध बंधन न बन जाए, चाहे लौकिक परिवार अलौकिक परिवार में, यहां पर भी इन सब के बीच में रहते हुए एक संकल्प हमेशा करना है और रोज बाबा के सामने दोहराना है कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई नहीं, मुझे किसी से सबसे प्यार कर रहा हूं, सबके बीच में हूं, परंतु किसी से भी नहीं। वो भक्ति मार्ग में थोड़ा एक गलत, एक अलग प्रकार का उदाहरण दिया जाता है, जैसे कोई एक स्त्री है किसी घर में रहती है और उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो रहती तो है पति के पास पर उसका यार उसकी बुद्धि में रहता है। तो भगत जो होता है वो संसार में तो रहता है पर उसकी बुद्धि में भगवान होता है, रहता इधर पर बुद्धि में परमात्मा। जैसे किसी हॉस्पिटल की नर्स परिचारिका बच्चों के कक्ष में वार्ड में सेवा देती है, 50 बच्चे हैं उस वार्ड में, सबकी सेवा करती है पर ध्यान किसकी तरफ रहता है, अपने बच्चे की तरफ जो घर पर है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हॉस्पिटल में पेशेंट को देख नहीं रही है, सबको देख रही है परंतु बुद्धि में अपना बच्चा उधर है। वैसे संसार को भी देखते रहना, हाथ फेर देना थोड़ा सा नरेश भाई ऐसे ऊपर से संसार के ऊपर से, परंतु सच्चा प्यार ऊपर, रियल लव ऊपर। तो निर्बंधन, हर चीज जो हम करते हैं बंधन को निर्माण करती है और कब बन जाते हैं यही पता नहीं चलता है। बंधन इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, भक्ति मार्ग के बंधन तो बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। वो घरवार को छोड़ देना और संन्यास ले लेना ये तो बहुत ही छोटा काम है, बहुत इजी है। बहुत भोजन कहो, वाणी कहो या संसार के सुख साधन कहो, ये छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। सच्ची बड़ी बात तो सूक्ष्म बंधनों को छोड़ना है। मन नए बंधनों का निर्माण करता है, हर दिन नए नए बंधन निर्माण होते हैं। केवल वो पता हो कि ये बंधन हो चुका है, कब वो संबंध बंधन बन जाए पता ही नहीं चलता है। कब जैसे जगदीश भाई ने एक क्लास में कहा है, एक है देहाभान देहाभिमान, एक है सेवाभिमान सेवाभिमान सेवा का अभिमान कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरा, ये वो रहा, ये इसका एरिया, ये मेरा एरिया, ये सेवा का अभिमान में बंध जाते हैं। ये भी बंधन है, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरा सेंटर, ये वहां क्यों गए तुम इधर, ये मेरा एरिया, ये तुम्हारा एरिया, ये मेरा डिपार्टमेंट, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट, कितने सारे नए बंधन निर्माण हो जाते हैं। तो बाबा ने दो बंधनों के विषय में कहा, सबसे पहला संबंध और दूसरा स्वभाव संस्कारों का बंधन। हल्के रहो, डबल लाइट रहो, जिनकी स्थिति ऊंची है वो हमेशा डबल लाइट रहते हल्के रहते, ये दो बंधन नहीं। तो अपने आप को सबसे पहले तो इन बंधनों से मुक्ति चाहिए। और अध्यात्म में यदि आगे जाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वैराग। जो बंधन में फंसा हुआ है वो कैसे आगे जा सकता है? ये मार्ग तो अकेले का अकेले की तरफ है, द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन है। यहां किसी को साथ में थोड़ी ना लेके जाना है, यहां तो अकेला ही चलना है, कांटों के पथ पर, पथरीली जमीन पर, अंगारों पर, यहां कोई साथी नहीं है। साथी बनाया मतलब बंधन, साथी बनाया मतलब नीचे उल्टी सीढ़ी, कोई साथी नहीं, एक परमात्मा ही साथी। और जैसे ही संसार के बंधन निर्माण हो जाते हैं उसका साथ दूर छूट जाता है, वो दूर चला जाता है। इसके लिए स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त, स्वयं को सर्व बॉन्डेजेस से मुक्त, स्वयं को सारी बेड़ियों से मुक्त, सारे पिंजड़ों से मुक्त, सारी सलाखों से मुक्त, जो जो जंजीरे हैं, जो जो चेन्स ने हमको बांध के रखा है। दादी जानकी ने कभी कहा था, ट्रैफिक कंट्रोल में तुमको जो याद आता है बाबा को छोड़कर वो तुम्हारा बंधन है। ट्रैफिक कंट्रोल करते समय यदि कुछ याद आ जाए तो वो समझ लेना बंधन है। और बंधन इतना जबरदस्त होते हैं, विस्तार हमने जो कर रखा है प्रवृत्ति का, यहां पाठ है एक सेकंड में अशरीरी हो जाओ। युक्ति से मुक्ति, वो कौन सी युक्ति है जिससे मुक्ति हो जाए? ये बंधन अर्थात हम बंद, हम पिंजड़े में हैं। पहले तो ये पता चला मैं कारागार में हूं, फर्स्ट रियलाइजेशन ये है कि मैं पिंजड़े में हूं। कोई कोई ऐसी अवस्था है कि इसका जन्म ही पिंजड़े में होता है, जन्म ही कारागार में हुआ है, अब उसको छूटने का कोई संकल्प नहीं आता है। पर हां, जब वो देखेगा बाहर पंछी उड़ रहे हैं तब उसे भी लगेगा कि मैं भी उड़ू। पर पहली जो चीज है ये मानना कि हां, इन स्पाइट ऑफ सारा ज्ञान होते हुए भी, सारी समझ होते हुए भी, सारी बुद्धिमानी होते हुए, इतना अकलमंद होते हुए भी, मैं आत्मा इस समय इस बंधन में हूं। एक व्यक्ति बंधन बना है मेरे जीवन में, जब तक यह व्यक्ति विदा नहीं हो जाए, और मैं उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन तीन बच्चियों का क्या होगा, मां तो गुजर गई, कौन देखभाल करेगा इनकी। उस दिन भी कहा था, रिजाइन एज अ जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स, इस संसार के जनरल मैनेजर के पद से इस्तीफा दे दो। ठेकेदार मैं हूं, मैं देखूंगा किसका क्या करना है, भगवान हूं आज। तो बंधन से स्वयं को मुक्त करना है, और इसके लिए एक सबसे बड़ी युक्ति है मुक्ति धाम में रहना। मुक्ति धाम में ऊपर चले जाना और यहां पर अभ्यास करना कि मैं आत्मा मुक्ति धाम में हूं, लैंड ऑफ लिबरेशन में हूं, लिबरेटेड हूं, लिबरेटर करके बाप आया है, और मैं यहां हूं। और यहां पर सारा याद करना परम धाम में बैठकर कि मैं मुक्त हूं, फ्री, इंडिपेंडेंट, कोई सपोर्ट नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई अवलंबन नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई चेन नहीं, कोई सलाखे नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पिंजड़ा नहीं, मैं यहां हूं। बाकी सब नीचे रह गया, ये देखो देह, ये उसके संबंधी, ये उसके भोग, ये देखो संसार के विकार, इसको बहुत भोगा, क्या मिला? अरे मूर्ख मन, ये देखो पति यहां बैठा है। ये देखो पत्नी, ये यहां बैठी है, सोचता था ये बहुत ही अच्छी है, ये बच्चे अनाथ वृद्धाश्रम में छोड़ के चले गए, ये है सारे वो परिवार वाले। जब तक इनसे वैराग नहीं तब तक उड़ नहीं सकती आत्मा, इन्हीं में फंसी है, चाहे ज्ञान में आ जाए या ना आए। ज्ञान में आने के बाद में भी मोह जाता नहीं है, सेवा करना सेवा करना है, उसी के बंधन में फंस जाते हैं। उनकी बीमारी या अपनी बीमारियां हो जाती है, उनकी आर्थिक स्थिति हमारी आर्थिक स्थिति हो जाती है, उनकी मृत्यु का दुख जितना अज्ञानियों को नहीं उतना हमें। ये लौकिक परिवार कभी कभी बंधन बन जाता है, यहां तो तुम्हारा कौन बाप कौन बा, कौन पिता कौन मां, तोड़ निभाने के आड़ में माया से तोड़ निभाते हैं और बंधन में बंध जाते हैं, वैरागिक हो जाता है। वो सब करो परंतु वैराग, बिना वैराग के, वो भी तीव्र, तीन प्रकार के वैराग है, तीव्र वैराग, मध्यम वैराग, मंद वैराग। मध्यम वैराग करता था हाँ ठीक है छोड़ तो दिया इतना, और कितना छोड़े। मध्यम वैराग होता है एक, हाँ छोड़ देंगे अभी क्या, वैसे मैं आदत नहीं है कभी कभी। तीव्र अर्थात अभी के अभी, अभी के अभी, राइट नाउ, इंस्टेंट वैराग, नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी पर स्ट्रेस, संसार में ऐसा कहते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए यहां का। और इसका संबंध होने और न होने से नहीं है चीजों के, नहीं तो न होना यह भी बंधन हो जाता है। न होना यह भी बंधन है। जैसे एक साधु था, उसका इंटरव्यू लेने एक व्यक्ति जर्नलिस्ट पहुंचा, देखा कि अरे बाप रे इतना बड़ा, ये साधु देखो एक अकेला रहता है एक ही कुटिया में, कोई ना उसका आश्रम ना शिष्य कुछ नहीं, कितना बड़ा त्याग है ये, ना आश्रम भी नहीं है शिष्य भी नहीं है कुछ भी नहीं है, ना उसका नाम है कहीं। तो उसका इंटरव्यू लेने पहुंचता है और वो साधु क्या कहता है पता है, वो कहता है मेरा एक भी आश्रम नहीं है, मेरा एक भी शिष्य मैंने नहीं बनाया, ऐसा है कोई, उसी का अहंकार है, जो जिन्होंने शिष्य और आश्रम बनाए उनको अहंकार है, हमारा आश्रम है और हमारा शिष्य है, और इनका है कि मेरा एक भी शिष्य नहीं है, ये उसका अहंकार है, मैंने पैसे छोड़ दिए इसका अहंकार, वो पैसों में अभी भी मोह बहुत है, इसलिए ये कहा जा रहा है, इसलिए तो ये कहा जा रहा है। राबिया के राबिया और हसन की बहुत सारी कहानियां है, राबिया के पास, राबिया संत हुई है सूफी संत, उसके पास एक व्यक्ति आता है और हीरे अपना चांदी के या हीरो के कुछ सोने के सिक्के रख देता है, तो हसन बाजू में बैठा होता है, वो भी संत है ये भी संत है, वो कहता है ये हटाओ यहां से, ये क्या लेके आए तुम, ये सब चीजें हम लोग नहीं रखते अपने पास, पैसे भी से पैसे वो क्यों रखा तुमने। तो राबिया कहते रहने दो ना, बेचारा उसके पास इतना गरीब है कि देने के लिए कुछ और भी तो नहीं है उसके पास, पैसे ही देने के लिए, तो रहने दो, वो इतना गरीब है कि ये सोने के सिक्के के अतिरिक्त तो बेचारे के पास कुछ है भी तो नहीं, क्या देगा, देने दो। वो कहता है व्हाट, वो हसन कहता है, तो वो राबिया कहती है कि तुम और अभी भी धन से मोह नहीं गया, वो कहता है धन से मोह नहीं गया, इतना तो मैंने उसको धुतकारा और तुम कहती हो मेरा मोह है। वो कहती है कि ये जो मिट्टी पड़ी है आसपास इनको कुछ करते हो क्या तुम, बोलता है नहीं, तो उसको क्यों करते हो, वो भी तो मिट्टी है, चाहे है या नहीं है उससे क्या संबंध, नहीं तो छोड़ने का ही अहंकार कि मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया अर्थात उसमें अभी भी मोह है, वो अभी भी आकर्षण वस्तु है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है, त्याग का वैराग का। तो बिना वैराग छूटते नहीं है बंधन, वैराग जो बंधन है वो काले सर्प की तरह दिखाई दे, व्यक्ति वस्तु काटने वाले ऐसे दिखाई दे तब उनसे पीछा छूटेगा, जी खट्टा हो जाए व्यक्तियों से अच्छा ही नहीं लगे तो क्या उससे SMS करे और क्या बात करे और क्या उसके मेल करे और क्या पूछे अभी क्या कर रहे हो और क्या खा रहे हो और आज क्या बनाया, इच्छा ही नहीं है, पैर उखड़ जाए संसार से। तो वैराग सूक्ष्म अवस्था है मन की, और जब वैराग उदय होता है हल्कापन आता है, तब हल्कापन आता है, नहीं तो व्यक्तियों के पैर धंधन धंधन नाचते रहते हैं मस्तिष्क में उनके पैरों की आवाज ठुमके लगाते रहते हैं अंदर, जब तक व्यक्ति विदा ना हो जाए वस्तुओं से वैराग ना आ जाए तब तक बंधन समाप्त नहीं होते। तो ये ऐसी 5 पॉइंट्स, वैसे टोटल 10 है, तो 6वें नंबर की क्या बताया, 3 चीजों को, 2 3 खुशी दो और शांति दो आत्माओं को, दूसरा बताया हिप्पी, तो उसके लिए पहले हिप्पी को रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये है हिप्पी जो भटक रहा है, जो दुखी है, उदास है, निरंकुश है। अभी अभी परसों अस्पताल में एक पेशेंट एडमिट हुआ, उसने 200 गोलियां ली नींद की एक प्रकार की, दूसरी 65 टैबलेट्स ली दूसरे प्रकार की नींद की, और अकेला आया अहमदाबाद से यहां पर, और यहां आकर दवाइयां ले ली और लोगों ने उसको लेके अभी भी ICU में भर्ती है, और बहुत सारा और भी कुछ ले लिया, हाँ सब इकट्ठा। अब सोचने की बात है, एक व्यक्ति क्यों इस किस कगार पर वो खड़ा होगा उदासी के, कि जीवन एकदम समाप्त हो गया होगा, एब्सोल्युटली होपलेस, कुछ करना ही नहीं है जीवन में, अब क्या करूं, ऐसी अवस्था होगी होगी तब उसने ये किया होगा। फिर उसके रिश्तेदारों को फोन किया, पुलिस आई बुलाया, फिर वो दूसरे दिन आए, तो इतने दुखी है संसार में। उसके पहले एक कन्या 18 साल की, उसने वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको, वो स्कैबिस खुजली का जो एक दवाई होती है वही खाली पूरी। उसके साथ ही एक दूसरा लड़का आया इधर का आबू का, इसी हफ्ते में 3 पेशेंट्स आए पॉइजनिंग के। उसने तो वो पूरा रैट पॉइजन होता है ना चूहे मारने का, वही पूरा खा लिया, पर शायद डुप्लीकेट पॉइजन होगा, बच गया वो। नहीं तो रॉट पॉइजन से आज तक कोई बचता हुआ हमने तो देखा नहीं है जीवन में। जिंक फॉस्फाइड से कभी कोई बचा नहीं है, पर उसने डुप्लीकेट माल होगा। तो पर सोचने की बात है, अंदर से कैसा दुख होगा व्यक्ति में कि सारे रास्ते जैसे उसको लग रहा होगा बंद हो गए, और ये लोग आबू के लोग हैं, उनको ऐसा भी नहीं लगा है कि शायद यहां तो जाके देखो एक बार ओम शांति में क्या है, अर्थात अभी तक हमने सेवाएं की नहीं है। अभी भी उनके मन में ये सारे संकल्प है। एक व्यक्ति था कुछ दिन पहले आया था घर पे, कोशिश की लटकाने की तो रस्सी टूट गई, फिर वहां से गया नक्की पर, गया नक्की की वो जो डाली है एक जगह वहां पे फंदा गुना है, तो वहां से टूट के नीचे गिरा, उसको लेके आए। 2 अटेम्प्ट्स फेल्ड अटेम्प्ट्स। कभी कभी ये लोग का लक्ष्य ये होता है, थोड़ा अटेंशन सीकिंग भी होता है कि घर वालों को रियलाइज तो हो कि हम भी कुछ है। तो संसार में दुख बहुत है, हिप्पी बहुत है, उनको हैप्पी बनाओ, और हैप्पी बाहर के साधन नहीं बना सकते, उनको पैसे दे दो धन संपत्ता कपड़े विपड़े इससे नहीं बनेंगे, आत्मा जब तक तृप्त नहीं होती तब तक। तीसरा तीसरा अन्नपूर्णा के भंडार बनो, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट था जो गलती की है जो पाप की है वो सबसे पहले जो दो तीव्र पुरुषार्थी जो ठंडे पुरुषार्थी बने हैं अलबेलेपन के कारण उनको वापस टीपी बना दो, तीव्र पुरुषार्थी बना दो। और दूसरी बात जो पाप की है विकर्म की है पश्चाताप की है, बाप 3 बार माफी करते हैं तो और क्या करते हैं, रियलाइज हो हमें अपने अंदर, स्मृति आए जागृति आए तो हम प्रतिज्ञा करें। फिर उसके बाद में बताया एक पैच सफलता का, एक तिलक विजय का, और एक स्नेह का गुलदस्ता। उसके बाद में चेयर, निरंतर चेयर पर बैठ के रहना, चेयर लेके चलना साथ साथ, पीछे पीछे हमारे चेयर। और लास्ट पॉइंट बताई, तो लास्ट पॉइंट है निर्बंधन। इसमें लास्ट एक बहुत अच्छा वाक्य है, जो श्रेष्ठ बच्चे हैं उनके उनमें श्रेष्ठ सेवा समाई हुई है। अच्छा से पहले जो श्रेष्ठ है उनमें श्रेष्ठ सेवा समाई हुई है, तो ऐसे स्वयं को संपूर्ण बंधनों से, संपूर्ण बेड़ियों से, चेन से, बॉन्डेजेस से, डिपेंडेंसीज से मुक्त करना है। और उसके लिए वैराग का उदय, और वैराग कैसे आएगा, वैराग कैसे आएगा, वैराग कैसे आएगा, वैराग कैसे आएगा, वही कहा अपनी मूर्खता पर हंसना 3 बार। फिर जो वैरागी आत्माएं हैं उनके जीवन को पढ़ना, यज्ञ के इतिहास को पढ़ना, दादियों के जीवन को पढ़ना, जीवन कहानियां पढ़ना कि कैसा कैसा वैराग था दादियों के जीवन में, कैसे कैसे एक एक दिन उनका था पहले का। तो वैरागी व्यक्तियों के जीवन विरक्त हो जाए आत्मा, विरक्त, विरक्त अर्थात बिल्कुल ही डिटैच्ड, कोई लेना देना ही नहीं, एकदम वो हमारे जैसे सब्जेक्ट ही नहीं है, विरक्त हो गई, वीतराग अवस्था, ऐसी विरक्ति में ही साधना की जाती है। और वैराग को कैसे पाए, दूसरों के दुखों की स्टडी करके कि ये देखो ये है संसार, ये है दुख, ये देखो इसने ये किया ये प्राप्त हुआ, कहां तो वो ऊंचाइयां थी और कहां अब नीचे गिर गए, ये है इनके जीवन कैसे एक सेकंड में क्या से क्या हो गया, कितना सेकंड लगा, 60 लोग चले गए, गए किस लिए थे, सोचा था किसी ने रावण दहन देखने जाएंगे, मातम ही मातम, आंसू ही आंसू, आंसू रुक नहीं रहे, वो गिरा क्या और पीछे भागे, और किसने सोचा नहीं था कि मृत्यु खड़ी है ट्रैक पर, सेकंड में कहां से ट्रेन आ गई और सारे कुचल दिए गए और सब मर गए। अच्छा ऐसा लिखा था। तो जीवन अनित्य है, जीवन की अनित्यता का चिंतन, मृत्यु का चिंतन, बुढ़ापे का चिंतन, बीमारी का चिंतन, दुखों का चिंतन, जन्म मृत्यु दुख जरा आदि दुख दोषानुदर्शनम, दर्शन करना साक्षी होकर तब वैराग आएगा संसार से। तो ये सारी विधियां है वैराग की। ओम शांति। फियर आ जाना चाहिए और फिर उसके ऊपर निर्भय बनना। फियर आ रहा है मतलब अभी तो अंदर से बहुत ही कमजोर है, कच्चा सिक्का है, अभी लिंबू टिंबू है, अभी भी अभी तक पावरफुल पक्के नहीं हुए, अभी वो परिपक्वता नहीं है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं आई है, डर लगता है ये सब चीजों से, अर्थात प्रैक्टिस नहीं है। बार बार देखो तो डर नहीं, डर खत्म हो जाएगा, डर डर जाए, मृत्यु की मृत्यु हो जाए, जो ऐसी अवस्था बार बार चीजें करते रहो डर खत्म हो जाता है। ये पहली बार देखोगे तो डर लगता है, मुंबई में जाने के लिए डर लगता है लोगों को कभी कभी, वो लोकल ट्रेन में कैसे बैठेंगे, पर जो वहां रहते हैं उनके लिए एंजॉयमेंट है, आराम से घूमते हैं। तो ये डर जो है ना, यू डू इट बाय डूइंग, करो तो डर खत्म होगा। तो ये सारी चीजों का चिंतन देखते रहना तो वैराग आएगा, और जब वैराग आएगा तो ही बंधन कटेगा। जिस व्यक्ति में मोह है उसके अवगुण हम देखना ही नहीं चाहते, देखो उसके अवगुण, लिस्ट बनाओ उसके उसके दोस्ती के नुकसान की, अवगुण है ही नहीं, अर्थात क्योंकि मोह का घेरा इतना ज्यादा है कि अवगुण दिखाई नहीं देते, परंतु वो मोह विकार की श्रेणी में है, प्रेम गुणों की श्रेणी में, पर हमारे मोह को हम प्रेम कह रहे हैं जबकि मोह है वो, और मोह कोई बहुत अच्छा गुण नहीं है, वो विकार है। जैसे काम खराब है वैसे मोह भी वैसा ही है। तो उससे विरक्त होने के लिए डिटैच अवर्शन थेरेपी, तो निर्बंधन। ओम शांति।